نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہم نئی سورت سٹارٹ کر رہے ہیں, سورہ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد آیت نمبر 1 to 28. صاد, صاد حروف مقطعات میں سے ایک, اور اسی قسم کی حروف جو سنگل الفابیٹ ہے اس کے ساتھ تین قرآن میں سورتیں ہیں. ایک تو یہی سورت ہے, ایک سورہ قاف ہے اور ایک سورہ نون ہے. ایک ایک حرف سے شروع ہوئی ہے نا, مگر ایک حرف کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ آیت نہیں بنائی گئی. آج جہاں پہ دو حروف آئے ہیں تو وہاں پہ آیت ہے, جیسے حامیم ہے اس طرح سے. تو ایک حرف پہ نہیں بلکہ کلام کو آگے جاری رکھا گیا, یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. والقرآن ذکر, اور جیسے کہ حروف مقطعات کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, زیادہ تر یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کا ذکر آتا ہے, اور یہاں پہ بھی حرف کے بعد یعنی حروف مقطعات میں سے ایک حرف کے بعد. حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ جو جیسے آپ اس کو ایسے نہیں پڑھتے, علم, ہم, یس, تہ, ایسے نہیں پڑھتے, ان کو الگ الگ توڑ کے تو, ہ, یا, سین, الف, لام, میم, علم نہیں کرتے آپ, ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں اسے. اسی طرح اس کو سو نہیں پڑھیں گے, یا سو یا سی یا اس طرح نہیں, سود, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد قسم کھائی گئی ہے, وا قسمیہ. یہاں پہ کس چیز کی قسم کھائی گئی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مقطعات کے بعد زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی ہی بات آتی ہے, تو یہاں پہ بھی قرآن کریم کی قسم کھائی گئی. کون سا قرآن؟ جو ذکر ہے, ذکر والا ہے, نصیحت والا ہے, یعنی ذکر مطلب ریمائنڈر, وہ چیز جو نئی نہیں ہوتی بلکہ پہلے سے معلوم ہوتی ہے, کسی وجہ سے انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے تو اس کو یاد کروانا تذکیر ہے, یاد دہانی کرانا تذکیر ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے, پتا ہے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے مثال کے طور پر کہ ہم نے ویکینڈ پہ کسی دعوت پہ جانا ہے, پتا ہے لیکن بھول گیا, اس لیے ہم نے فون پہ ریمائنڈر لگایا ہوتا ہے, تو وہ ہمارے لیے تذکیر ہوتی ہے کہ او ہم نے جانا تھا. ہماری وہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے, ہمیں پتا ہے, ہم نے خود کرائی تھی اپوائنٹمنٹ, لیکن ہمیں ذہن سے نکل جاتا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کون سی بات پہلے نہیں پتا, سب پتا ہے ہمیں, کیا اللہ رسول کا ہمیں نہیں پتا, ہمیں قیامت کا نہیں پتا, کیا بتائے گا ہمیں قرآن؟ پتا ہے. کون کہتا ہے نہیں پتا؟ وہ تو اللہ نے آپ کی فطرت میں ڈال دیا, لیکن وہ باتیں آپ بھول جاتے ہیں. اور کافروں کی بھی فطرت کے اندر ہے توحید, مگر وہ اس کو بھول چکے ہیں. اوپر اتنی دنیا کی یعنی غفلتیں اور یہ دنیا کی اور چیزیں اتنی زیادہ ان کا امپیکٹ ہے, جیسے سمجھ لے کہ گرد پڑ جاتی ہے نا کسی چیز پہ, وہ نیچے گرد کے کوئی آپ کی بک نیچے پڑی ہوئی ہے, آپ نہیں رکھی تھی وہاں پہ, لیکن آپ اس کے اوپر گرد کی تہیں پڑ گئی ہیں, آپ کو وہ بک کبھی نظر ہی نہیں آتی. ایک دن آپ جھاڑتے ہیں گرد کو تو وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے, وہ یہ بک مجھے فلاں نے دی تھی. تو یہ ہے ذکر, یعنی ریمائنڈ کر لینا. تو اتنی گرد و غبار پڑ جاتی ہے جو فطرت میں اللہ نے ہمارے توحید رکھی ہے, اس کے اوپر اتنا کچھ پڑ جاتا ہے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا وہ سبق جو اللہ نے ہمیں پڑھا کے بھیجا تھا. یہ قرآن ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے, یہ تذکیر ہے ہمارے لیے, یہ دی ذکر ہے, نصیحت والا ہے. کیا اسی طرح یہ بڑی شان والا کلام ہے, بہت شان والا ہے, بڑی عظمت والا ہے, مرتبے والا ہے. اس کی قسم کھائی ہے اللہ نے جو انسان کو نصیحت کی بات بتاتا ہے, اور جب کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں خیر خواہی ہوتی ہے. یہ خیر خواہی ہوتی, جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں, اس میں کیا ہوتی ہے؟ ان کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم تک وہ بات پہنچانا چاہتا ہے جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں. یہ وہ زندگی کا پروگرام دیتا ہے جو ہمیں ذہن میں نہیں ہوتا. یہ ہمیں پچھلے انبیاء کی باتیں بتاتا ہے. بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ عزہ میں ہیں اور شقاق میں ہیں. یعنی قرآن سن کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ خیر خواہی کی بات ہے, یہ اتنی شان والا کلام ہے, اس کو سن کے بجائے کہ وہ مانتے, اس کو اپریشیٹ کرتے, فوراً اس کو قبول کر لیتے, الٹا کیا ہوا, وہ اس نصیحت کو لے کر اور سخت تکبر میں پڑ گئے. عزہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے غلبہ, اقتدار, بڑائی. تو وہ اپنی بڑائی میں پڑ گئے. انہوں نے اس کو بجائے ماننے کے اتنے اپنی تکبر کے اندر آئے کہ اس کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. اور شقاق الٹا اس کی مخالفت شروع کر دی, ضد میں ایسے آ گئے. اور وہ یہی حال ہوا تھا قریش مکہ کا. ایسے نہیں تھا کہ ان کو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا, ایسے نہیں تھا کہ اس قرآن میں کوئی نقص تھا, بلکہ یہ وہ مسئلہ ان کا تھا کہ ان کی اپنی بڑائی وہ جو تھی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی کہ ہم کس طرح اس کو مان لیں. وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے, تو اب اس کی بات مانیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے. اب جب یہ بات ہوئی, یہ عزہ کی بات ہے, جب یہ بات ہوئی تو پھر اس کے بعد شقاق بھی آ گیا, اس لیے کہ اس کے بعد مخالفت ہی کریں گے نا. جب کوئی اپنے آپ کو اتنا عقل مند اور بڑا سمجھنے لگے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میری بات ہی سب سے اوپر ہونی چاہیے, پھر میں کسی کی بات کو کیا خاطر میں لاتا ہوں. تو ایسے لوگ پھر ہدایت سے دور ہی رہ جاتے ہیں جن میں تکبر ہوتا ہے. آج بھی کچھ لوگ اتنے متکبر ہیں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ہیں, ہمیں اتنی سمجھ ہے, ہم نے کیا سیکھنا ہے قرآن سے, کیا یہ سکھائے گا ہمیں. مطلب کتنا یہ ایک تکبر کی بات ہے کہ یہ قرآن کیا سکھائے گا. یعنی میری اپنی عقل اتنی کامل ہے, سب کچھ مجھے پہلے ہی پتا ہے, میں پہلے سے سب کچھ جانتی ہوں. تو جب انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ اللہ کے کلام سے محروم ہو جاتا ہے. بات یہی بات ہے کہ انسان اب جو عاجزی اختیار کرتا ہے, جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ اس سے ہدایت پا سکتا ہے نا کہ یہ مجھے راہ دکھائے گا. لیکن جو کہتا ہے مجھے پہلے سے ہی راستہ پتا ہے, مجھے کون راہ دکھائے گا, وہ کیا سیکھے گا اس سے. تو وہ شقاق میں ہیں, مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں کم اہلکنا من قبلہم من قرنن, کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے, کتنی بستیاں ہم نے ختم کر دی, کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. تو پھر کیا ہوا, وہ کس وجہ سے ہلاک کی گئیں؟ انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا پیغمبروں کی بات سننے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا, تو اس وقت ان کا حال جانتے ہیں کیا تھا؟ بڑی بڑی عالی شان بستیاں تھیں, بڑی بڑی عالی شان لوگ تھے, آگے نام بھی آئے گا کئی قوموں کا. فنادوا, تو انہوں نے چیخو پکار کی. وہ جس وقت ان کو ہلاک کیا گیا اس وقت وہ بہت چیخ رہے تھے, بہت چلا رہے تھے. اس وقت وہ ایمان کے بڑے دعوے کر رہے تھے. اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے, ہم نے مان لیا, اب ہم نہیں کریں گے. وَلَا تَحِينَ مَنَاز, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تھی اس وقت کوئی نجات جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا, تو وہ عذاب سے نجات پانے کے لیے چیخنے چلانے لگے, بلند آواز کے ساتھ ندا دینے لگے. اب انہوں نے ندا میں کیا کہا تھا یہ اس آیت میں نہیں ہے, لیکن مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ندا کرتے تھے, انہوں نے فریاد کی تھی یہ عذاب اللہ ہم سے دور کر دے, بس دور کر دے. تو جب انہوں نے عذاب دیکھا تو تکبر سے بھی اور کفر سے بھی اور شرک سے بھی توبہ کر لی, ایمان لے آئے. آپ نے دیکھا نہیں فرعون کو, بالکل جب ڈوبنے لگا تو اس کی حالت کیا تھی؟ پھر उस वक्त ईमान भी ला रहा था, उस वक्त तौबा भी कर रहा था, अपना सारा मूसा के रब पे और बनी इसराइल के रब पे मैं ईमान लेकर आया। और फिर एक और भी बात मुफस्सिरीन ने लिखी है कि वो क्या निदाएं कर रहे थे, वो अपने गम और जो उनके अंदर पछतावा और जो जो भी उनका तकलीफ थी उसको जाहिर कर रहे थे, जो बेचैनी थी उसको चीखो पुकार कर रहे थे, उसके जरिए इजहार कर रहे थे। जैसा कि इंसान दर्द हो उसको या बेचैनी हो तो वो कैसे चीखता है ना। तो ये वक्त फिर फरार का नहीं था, ये निजात का नहीं था। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने बताया है अंजाम के, देखो फिर उस वक्त कोई मदद की जगह नहीं होगी। अगर तुम आज इनकार करते हो कुरैश मक्का या कोई भी, तो देख लो अल्लाह ने पिछली कितनी बस्तियां हलाक कर दी। आज तुम कट के रहना चाहते हो, मुखालफत करते हो, बस जस्ट ये नहीं था कि कोई रीजन था मुखालफत का, कोई कोई जेन्युइन रीजन हो, कोई कुछ हो, नहीं बस ऐसे ही, क्योंकि अपने आप को जो बड़ा समझते हैं। अना परस्ती जो होती है ना इंसान को गर्क कर देती है, ये कहीं का नहीं छोड़ती है, जो तकब्बुर है, ये मैं बहुत बड़ी चीज और मेरी अकल और मेरे ये इंसान को तबाह करके रख देती है। ऐसा इंसान फिर कभी हक कबूल करता ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो मैं उसको हक नहीं कबूल करने देती। और कुरैश मक्का का प्रॉब्लम ही ये था, ये नहीं था कि उनको इस कुरान के अंदर कोई मसले नजर आ रहे थे, कोई ऑब्जेक्शंस थी, ऑब्जेक्शन बस ये थी कि मैं मेरा दिमाग, मैं इतनी बड़ी चीज, मैं इतना बड़ा सरदार। अल्लाह अकबर, तो देखें इस चीज ने फिर उनको कहां तक पहुंचाया। वह आजीबु, और उन्होंने ताज्जुब किया किस बात पे, अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, कि उनके पास आ जाए कोई इंतजार करने वाला उन्हीं में से। ये कैसी बात है, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। यानी देखें उनको ताज्जुब यही थी ना, ये देखें यहाँ पे पता चल रहा है कि इज्जत क्या थी उनके अंदर, बड़ाई का एहसास क्या था, ये अब हमें बताएगा। हम ही में से आ गया एक इंतजार करने वाला, हमारे तो सामने ये पैदा हुआ है, हमारे सामने पला बड़ा है, हमने इसकी यतीमी के दिन देखे, फिर इसको रोते हुए देखा अपने दादा के पीछे, फिर उसको रोते हुए देखा अपनी माँ के पीछे, फिर ये किस तरह अपने चचा के घर में पला, ये इसको मिलनी थी रिसालत। वो ये कहते थे कि यानी ये भी एक तकब्बुर की बात है ना, कि ये हम इसकी मान ले, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। अब ये देखिए यानी आप सिर्फ एक पढ़ते हुए देख लेना, और चूंकि मे भी हम यूज टू हो गए बार बार ये पढ़ते हैं इस किस्म की आयात, तो हमें इतना नहीं फर्क पड़ता या असर होता। लेकिन आप इमेजिन करें कि जिसको ये कहा जा रहा हो किसी जगह पर, उन पर क्या गुजरती होगी कि ये जो हमारे अंदर से इसकी हम मान लें, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैसी गुजरती होंगी ये बातें। और फिर उससे भी बढ़ के वकाल अल काफिरुना हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, और कहा काफरों ने ये जादूगर है और बहुत सख्त झूठा है। वो इंसान जिसने सच्चाई पे अपनी सारी जिंदगी गुजारी, कभी झूठ नहीं बोला, जिसको खुद ये सादिक कहा करते थे, अमीन कहा करते थे, उनको अब कह रहे हैं कि ये सख्त झूठा है, झूठा भी नहीं काज़िब भी नहीं है, कज़्ज़ाब है, मुबालगा, बहुत ज्यादा झूठा है। क्या उनको प्रॉब्लम था, कैसे जादूगर कैसे कहते थे, इसलिए कि जादूगर क्या होता है, जादू यानी किसी के ऊपर ऐसा असर कर देना, तो कहते थे इनकी बातें बड़ी असर कर जाती हैं। देखो घर टूट रहे हैं, भाई भाई से जुदा हो रहा है, बीवी शोहर से के सामने बोल रही है और वो कुछ अपना रास्ता अलग कर रही है, चचा भतीजे अलग हो गए हैं, ये तो सारे घरों को तबाह कर रहा है, ये तो ऐसा जादू कर देता है अपनी स्पीच से। अब देख लेना, हालांकि किसी की स्पीच में तासीर होना तो एक अच्छी बात है, जो खैर की बात कोई करे और उसकी स्पीच में तासीर होना, ये वाकई इतना असर कर लेती है लोगों की दिलों पर कि वो उनकी जिंदगियां बदल जाती। इसको पॉजिटिव लेने की बजाय इसको भी नेगेटिव ले रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि ये तो जादू हो गया, जादूगर हो गया, और फिर सख्त झूठा है। अब ये भी क्या चीज थी, क्यों कह रहे थे सख्त झूठा, कि ये झूठ है जो ये कहते हैं कि जो है एक ही खुदा है बस, और ये झूठ है कि जो ये कहते हैं कि ऐसा होगा कि एक दिन आएगा क्यामत का, ये सख्त झूठी बातें, इसके ऊपर झूठ कहते थे ना, आज भी लोग कहते हैं ब्रेन वॉश कर देते हैं ये, इनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, लोग इस तरफ दीन की तरफ चल पड़ते हैं फिर। और ये क्या है असल में, ये इस तरह से कहना, इससे के कोई फायदा होता है, कोई फर्क पड़ता है इससे, जब कोई लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं, इसी को नेगेटिव प्रोपेगेंडा कहते हैं। जब किसी से मुतनफिर करना हो लोगों को, किसी के खिलाफ करना हो, तो इस किस्म की मुहिमात चलाई जाती हैं, कैंपेन्स चलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, जिसमें उस फर्द को या उस कम्युनिटी को इतना बदनाम कर दिया जाता है कि कोई उनके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं होता, कोई उनके ऊपर ट्रस्ट करने को नहीं तैयार होता। यानी उसको एक तरह से ऐसा कर दिया जाता है ना कि उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा, उसको कोई तवज्जो नहीं देगा, जैसे आज के वक्त में मीडिया ने कर दिया मुसलमानों को। इसी तरह हमारे यहाँ आप देखें कि इस कदर नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया दीन वालों के खिलाफ कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहती कुछ हैं लोग जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो के वो इस तरह के व्यूज रखते हैं और ऐसे हो जाते हैं कि वाकई वो लोगों को मिस गाइड करते हैं। कुछ लोग मुसलमानों में ही ऐसे होते हैं जो लोगों को उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं, मगर सब ऐसे नहीं है। लेकिन नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर करके ये कर दिया गया कि अब लोग किसी दीन वाले को कुछ समझते नहीं है, उसको कोई कोई उसकी इज्जत नहीं रह गई, और जब उसको देखेंगे तो वो उससे दूर भागते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज है, हमें भी ना ये जर्म्स चिमट जाएं जो इसको लगे, जैसे कोई बीमारी लगी हुई है इसको दीन की, और कहीं हम इसके पास आए तो हमें भी ना लग जाए। लोग बाकायदा जरा डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, आप उनको कहें भी उनके पास बैठने की कोशिश करें वो नहीं बैठना चाहते, वो दूर दूर रहते हैं। आप किसी पार्टी में देख लें वो उनसे हट के रहते हैं, किसी जगह पे आप चले जाएं वो कहते हैं नहीं इनके पास ना, यानी हमारे काम के नहीं है। इस कदर प्रोपेगेंडा हो चुका है किसी, यानी आप मीडिया को क्या ब्लेम करना जो वेस्ट का मीडिया या कहीं और का है, हमारे तो अपने मुल्कों में यह हाल है। किसी को बुरके के अंदर देख लें, किसी को हिजाब के अंदर, किसी को दाढ़ी के साथ देख लें, फिर लोगों के उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, यानी बिल्कुल हकारत कि ये क्या चीजें हैं। तो मानना कि कुछ लोगों ने उल्टे काम किए, मगर उसकी वजह से सब तो नहीं खराब हो जाते। जैसे कि हम भी कहते हैं जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हम कहते हैं सब मुसलमान बुरे तो नहीं, अगर चंद लोगों ने कुछ गलत किया, लेकिन फिर वही काम हमारे यहाँ भी हो रहा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि फिर चंद लोगों की वजह से सबको ही समझा जाता है कि सभी जो दीन का हाल हुलिया वाला है वो भी ऐसा ही है, वो भी कोई फ्रॉड होगा, वो भी पैसे का लालची होगा, वो भी कोई उल्टा चलने वाला होगा, वो ये करेगा वो करेगा, बिल्कुल अकल से पैदल होगा, उसको कुछ पता नहीं होगा, वो बैकवर्ड होगा, आउटडेटेड होगा, कोई गरीब सा होगा, अनएजुकेटेड गंवार होगा। इस किस्म की ये सारी चीजें जो है ना, ये लोगों के जहनों में हैं। वजह क्या है? यही नेगेटिव प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर करके उन्होंने, कुरैश ने उस वक्त लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो कौन इनकी बात सुनेगा। इसी तरह आज दीन वालों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी गई, ये कोई उनके ऊपर नहीं ट्रस्ट करता तो फिर उनकी बात कौन सुनेगा, कौन उनके पास आके बैठेगा, सभी बुरे, ये भी बुरे, ये भी बुरे, ये तो हैं ही ऐसे, ये तो ये ही है, ये तो बस फिरका परस्ती करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं सही, हमें तो समझ ही नहीं आती हम जाएं किसके पास। इतना नेगेटिव बोला गया है कि आज लोग नहीं पसंद करते कि वो दीन की किसी क्लास में या किसी स्कॉलर की कोई बात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फर्क पड़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे मुल्कों में ये कल्चर आम नहीं हुआ, ये अभी भी लोगों का जहन ऐसा ही है। तो इस चीज को मिटाना पड़ता है, फिर ये जो प्रोपोगंडा होता है ये इफेक्ट करता है। ये अब उस जमाने में डिफरेंट तरह किया जाता था, आज तरीके मुख्तलिफ हो गए हैं, लेकिन है प्रोपोगंडा ही, नेगेटिव उस वक्त भी था और आज भी है। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इसको फेस किया था, इस चैलेंज को। ये नहीं कि प्रोपेगेंडा के जवाब में उनको बुरा भला कहना शुरू हो जाए, वो ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, असल बुरे तो ये हैं, ये हमें क्या बुरा कहते हैं, असल झूठे तो ये हैं, ये हमें क्या कहते हैं, ये तो असल तो ये जादूगर है। इस तरह से नहीं किया था। किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको डील किया था, उसी तरह हमें डील करना। लड़ने से किसी को ये बुरे ये बुरे, इस तरह तू मैं से नहीं बात बनेगी। हमें इस इमेज को क्लीन करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। हालांकि वो भी जानते थे दिलों के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। झूठे की बात कौन सुनता है फिर? एक दफा पता चल जाए कोई झूठा है, कोई उसकी बात ही नहीं सुने। इसी तरह एक दफा पता चल जाए कि ये कम्युनिटी इस किस्म की है जो ऐसी हरकतें करती है, तो जाहिर है कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। तो हमें मेहनत करनी होगी इमेज को क्लीन करने के लिए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक अपने मामलात से इस इमेज को क्लीन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। और लोग फिर वाकई इस बात के कायल हो गए, इस्लाम के अंदर कैसे दाखिल होते थे जब वो आके ये देखते थे कि नहीं, ये तो बात हक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है जिन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया। इस तरह से हमें क्लीन करना है, ना कि हम बुरा भला कहते रहे, देखो ये मीडिया हमारे खिलाफ है, फलां हमारे खिलाफ है, फलां हमारे खिलाफ, इसे क्या होगा, वो तो सबको ही पता है खिलाफ है या नहीं है, क्योंकि बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। बस यही इन्हीं अंधेरों से हम लड़ते रहे, अंधेरों से लड़ने से फायदा नहीं होगा। आप चिराग जलाइए ताकि अंधेरे दूर हो जाएं, आप अपना आप दिखाइए कि हम ऐसे नहीं हैं, ये गलत है इमेज जो हमारे लिए दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, अगली जो आयत है इसका थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बता देती हूँ ताकि आपको फिर समझ भी आ जाएगी एकदम से। इसका शान नजूल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अबू तालिब के पास गए जबकि वो बहुत बीमार थे। वहां पे कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी आए हुए थे, अबू जहल भी, आस बिन वाइल, अस्वद बिन मुतलिब और बड़े बड़े और रईस सरदार वहां पे बैठे हुए थे। तो मशवरा ये हो रहा था कि अबू तालिब बीमार हैं, अगर वो दुनिया से चले गए तो इसके बाद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस दीन से बाज रखने के लिए कोई सख्त कदम अगर उठाया तो अरब वाले कहेंगे, अरब के लोग कहेंगे कि जी अबू तालिब जब तक जिंदा था तब तक तो तुमने कुछ नहीं इसका बिगाड़ा, अब जब वो फौत हो गए तो अब तुम इसको निशाना बना रहे हो। हमें चाहिए कि हम अबू तालिब की जिंदगी में ही इनके इस मामले का, इस मसले का हल करें और ये हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें। तो वो इस वजह से अबू तालिब के पास बैठे हुए थे और उनसे जाके इन्होंने कहा कि तुम्हारा भतीजा जो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, तो अब आप इंसाफ से काम लें कि वो जिस खुदा की चाहे वो इबादत करे, लेकिन हमारे माबूदों को कुछ ना कहे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों को कोई गाली तो देते नहीं थे, यही फरमाते थे ये तुम्हारे खालिक नहीं है, तुम्हारे राजिक नहीं, कोई तुम्हारा नफा नुकसान नहीं करते, तो इसी बात को वो बहुत बुरा मानते थे, गाली समझते थे। तो अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फिर बुलवाया हुआ था और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भतीजे ये लोग तुम्हारी इस तरह शिकायत लेकर आए हैं, तुम क्यों इनके माबूदों को बुरा कहते हो, इनको इनके दीन पे छोड़ दो, तुम अपने खुदा की इबादत करते रहो। उस पे कुरैश के लोग भी बोलते रहे। आखिरकार जब सारों ने बातें अपनी कर ली ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाचा जान क्या मैं इन्हें एक चीज की दावत ना दूं जिसमें इनके लिए खैर है? अबू तालिब ने कहा वो क्या चीज है? आपने फरमाया मैं इनसे एक ऐसा कलमा कहलवाना चाहता हूं जिसके जरिए सारा अरब इनके सामने सरनगू हो जाएगा और ये पूरे अजम के मालिक हो जाएंगे। इस पर अबू जहल ने कहा बताओ वो कलमा क्या है? तुम्हारे बाप की कसम हम एक कलमा नहीं 10 कलमे कहने को तैयार है, यानी इससे अगर हमें इतनी मुमलिकत मिल जाए तो और क्या चाहिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। ये सुन के तो वो सारे लोग खड़े हो गए, कपड़े झाड़ के उठ खड़े हुए, कहने लगे कि हम सारे माबूदों को छोड़ के सिर्फ एक को इख्तियार कर लेंगे, तो बड़ी अजीब बात है। तो इस मौके पर ये आयत नाजिल हुई थी जो अभी हम पढ़ने लगे हैं कि अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा, क्या हम बना लें बहुत से इलाहों को एक ही इलाह, इन हाजा लशाई उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है, ये कैसे हो सकता है? हम सारी नजरें न्याजें बातें चढ़ावे सारे उनको छोड़ के बस एक को खुदा बना लें। अलग देख लें अगर इन कायनात पे गौर करें पता ही चल जाता है कि सब का बनाने वाला एक ही है, और उनके लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि एक को नहीं हमने मानना, इतने सारे छोड़ के बस एक को करें। अल्लाहु अकबर। वंतलक अल-मलाउ, और चल दिए सरदार, यानी वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कपड़े झाड़े, उठ खड़े हुए कि बस ये यानी अब नहीं हम और सुनना चाहते। वंतलक अल-मलाउ मिनहुम, और चल दिए सरदार उनमें से, और क्या कह रहे थे वो, अनिमशु के चलो, वस्बिरु अला आलिहतिकुम, और जमे रहो अपने इलाहों पर, यानी अब तुमने हिलना नहीं है इसके कहने के ऊपर, इनकी बातों में नहीं आ जाना, अपने इलाहों पर जमे रहो, हमने अपने इलाहों को नहीं छोड़ना। इन हाजा लशैउ युराद, बेशक ये अलबत्ता एक चीज है जो इरादा की जाती है। मतलब क्या है, अपनी जुबान में अगर हम कहें तो ये तो एक बड़ी गहरी साजिश है, ये जो इस तरह कह रहा है ना, ये इसके पीछे बड़ी साजिश है, ये आप लोगों को नहीं समझ आएगी, ये हम सरदार लोग सिर्फ समझ सकते हैं, ये बहुत पीछे कहीं कुछ ऐसी पीछे है ये चीज जो सही नहीं है। तो यानी देखें, जो आज भी लोग कहते हैं ना, बड़ी इसमें साजिश है, इसमें तो बड़ी गहरी साजिश है, ये बस इनके पीछे ना पढ़ो, ये तो यहूद के एजेंट, ये तो फलाने के एजेंट, ये तो फलां, ये इस तरह की बातें करके दूसरे को ऐसा कर देना फारिग के दूसरे की बात ही ना कभी कहेंगे, ये तो वहाबी हैं, ये तो ऐसे, इनकी बात ना सुनना, पीछे बड़ी साजिश है इनकी, मैं नहीं पता कौन है इनके पीछे। अरे लोगों को ऐसे कर देना कि ये बातें तुम्हें नहीं समझ आएंगी, हमें समझ आ रही है ना। अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने कहा कि अपने मौकफ पे जमे रहो, अब हमें इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी कि हम इस सैलाब के सामने बंद बांधे, तो ये क्योंकि मामूली बात नहीं है, ये तो ऐसी बात है बाकायदा प्लानिंग से की गई है, इरादा किया गया इसका, तो ये तो बड़ी प्लानिंग है इसके पीछे, यानी इतना उस चीज को बना लेना कि दूसरे तो खौफ ज्यादा ही हो जाएं कि पता नहीं कहीं हम भी इसका शिकार ना हो जाए। मा समिअना बिहादा फिल मिल्लतिल आखिरह, हमने तो नहीं ऐसी बात सुनी कभी इससे पहले किसी और दीन में, किसी और मिल्लत में, कभी नहीं हमने सुनी, हमें तो आज तक हमारे बाप दादा ने नहीं कभी ऐसी बात की, वो भी इसी चीज के ऊपर थे। आज भी लोग कहते हैं ना, कोई उनको बात बताई जाए, वो कहते हैं ना लोग, हमने कभी, हमने तो पीछे हमारे आखिर बाप दादा सारे, कभी नहीं हमने तो सुनी नहीं, नई बात सुन रहे हैं हम आपसे ये आज, आप उनको नमाज का तरीका बता दें, आप उनको कोई सही अकीदे की बात बता दें, कहते नहीं हमने तो नहीं कभी सुनी ऐसी बात कि इस तरह से भी नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे भी होता है, इस तरह से हाथ बांधने चाहिए, इस तरह से रफायदैन करना चाहिए, सजदा इस तरह करना चाहिए, कहते नहीं हम तो कभी नहीं हमने सुनी। इन हाजा इल्लख्तिलाक, नहीं है ये मगर मन घड़त, ये तो मन घड़त बातें, ये तो बस खुद ही घड़ी हुई है, ये जो कह रहे हैं ना हमें आसमान से खबरें आती हैं और वही उतरती है, ऐसी नहीं है बात, ये खुद ही बना ली हुई इन्होंने। आप देख रहे हैं कि किस तरह क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए लोगों में बातें फैलाई जा रही थी। मनगढ़ंत इसलिए कह दिया कि आप जब कोई मनगढ़ंत बात होगी तो कौन उसको सुनेगा, और इन्होंने क्यों नहीं सुनी हुई थी कभी भी किसी से, क्यों नहीं सुनी हुई थी, इसलिए कि शिर्क हर तरफ फैल गया था। आप देखें ईसाइत के अंदर भी शिर्क था, खुद ये वैसे ही मुशरिक थे, यहूद में भी शिर्क था। उन्जिला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना, अब ये देखें यहां से भी पता चलता है कि किस कदर इनके अंदर तकब्बुर था, क्या उतारा गया इस पर जिक्र, मिन बैनिना हमारे दरमियान में से, इसको जैसे हम अपनी जुबान में कहेंगे क्या यही रह गया था जिसके ऊपर ये वही आनी थी, ये सारे हम सरदार मर गए थे, यानी उनके अंदर इतनी एरोगेंस थी कि हमें छोड़ के कैसे हो सकता है कि इनको मिले, ये नहीं था कि कोई और वजह थी बल्कि यही कि स्टेटस, हमारा स्टेटस ऊंचा है, हालांकि स्टेटस देने वाला, माल देने वाला, कोई और चीजें ये सारी दुनिया की हैं, ये देने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह के नजदीक इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के पास कम है ज्यादा है, किसी के पास कितनी बड़ी सरदारी है या किसके पास सरदारी नहीं है, वो कहते थे हम सरदार हैं, हमें हमारे ऊपर आना चाहिए था अगर आता तो, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये हम भी हैं या ताइफ के बड़े 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 सरदार हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी लोग वैसे ही इतनी मान लेते हैं, तो अगर कुरान ने नाजिल होना था तो कुरान उन पे ना उतर जाता, इन पे क्यों उतर आया? वही जैसे इतनी सेंचुरीज गुजर के भी आज हमारे भी दिमाग उसी तरह के हैं जैसे मुशरिकीन मक्का के थे, कि किसी को उसका माल और उसकी दौलत और उसकी स्टेटस देख के इतने मुतासिर हो जाना कि बिच बिच जाना उसके आगे। हाँ, किसी का कोई ओहदा है, किसी की कोई पोजीशन है, किसी का कोई प्रोफेशन ऐसा है, तो उसको देख के इतने मरूब हो जाते हैं कि बस उसके मुकाबले में अगर किसी के पास नहीं है कुछ ज्यादा तो उसको कोई खातिर में ही नहीं लाता, उसको कुछ समझते ही नहीं। तो कोई ऐसी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई कि हमें हम पढ़ लिख के कोई पता नहीं ज्यादा हमने कोई तीर मार लिया, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, मेंटालिटी वही है। पहले भी किस चीज को फौकियत दी जाती थी, आज भी आम लोगों में किस चीज को फौकियत दी जाती है, लेकिन आप सिवाय दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के तमाम ही अंबिया को देख लें, या अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास भी अच्छा माल था, लेकिन बाकी सारे अंबिया को देख लें, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लें, आप बाकी अंबिया को देख लें, सभी ऐसे थे कि कोई उनके पास ऐसी काबिले जिक्र कोई माल या कोई ऐसा बड़े बड़े ओहदे सरदारियां या ऐसी बादशाहतें कोई भी नहीं थी। बल हम फी शक के मिन ज़िक्री, बल्कि वो शक में है मेरे जिक्र से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से अब ये बात है, उनकी बात खत्म हो गई या उन्होंने कही है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये बातें जो वो कर रहे हैं ये दरअसल ये मेरे जिक्र के बारे में जो अल्लाह ने वही नाजिल की है उससे बारे में शक में पड़ गए, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये अल्लाह की बात है या ये किसी और की बात है। बल लम्मा यज़ूकु अज़ाब, बल्कि नहीं उन्होंने चखा मेरा अजाब। बात दरअसल यह है कि उन्होंने अभी अजाब का मजा नहीं चखा, जब वो सजा सामने आएगी ना सब सब समझ आ जाएगी कि किसका क्या कलाम था क्या था। ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि अपने आप को बहुत बड़ी चीजें समझ रहे हैं। और फिर इसका अगला जवाब दिया गया, अम इंदहुम खजाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़ल वहाब, क्या इनके पास है खजाने रहमत की तेरे रब की, क्या इनके पास है अल्लाह ताला की रहमत के खजाने के, ये आप बताएंगे अल्लाह को कि किसके ऊपर रिसालत नाजिल करनी है, किसको नबी बनाना है और किसको छोड़ देना, ये बताएंगे अल्लाह ताला को। अल्लाहू अकबर, यानी वो लोग कहते थे ना कि हमारे ऊपर नाजिल होना चाहिए, हमें मिलनी चाहिए थी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो रब जो अजीज है गलबे वाला है वो जिसको चाहे दे जिससे चाहे बंद करे, और वहाब है देने वाला है अता करने वाला है, मगर जिसको चाहता है वो अता करता है। उसके रहमत के खजानों को क्या इनके पास है अथॉरिटी के ये बताएंगे कि कहां पे देना है और कहां पे नहीं देना। और ये बात इतनी जबरदस्त है क्योंकि देखें कोई भी चीज किसी की होती है ना अगर मिल्कियत, मिसाल के तौर पे आपकी मिल्कियत में आपके कोई कोई कपड़े हैं कोई कुछ है, अब आप या जेवर है, अब आप जैसे भी उनको स्पेंड करें जिधर भी दें लें करें कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो आप क्या कहेंगे आगे से, ये मेरी चीज है मैं फेंकूं मैं रखूं मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्या, ऐसे ही है ना। अल्लाह ताला की मिल्कियत है कि वो जिसको चाहे जो चीज अता फरमाए या ना दे, दे या ना दे उसकी मर्जी है। हमें भी कोई भी चीज हमसे ले हमसे हमें दे हमें कुछ महरूम रखे या बहुत अता कर दे ये सब उसकी मर्जी, ना मेरी ना आपकी ना किसी और की मर्जी है। किसी को चाहे तो औलाद दे चाहे तो ना दे, किसी को चाहे शिफा दे चाहे ना दे, किसी को चाहे दौलत दे चाहे ना दे, किसी के नसीब जैसे चाहे करे, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्योंकि हम कहते हैं इन्ना लिल्लाही, हम तो अल्लाह के हैं, तो यहीं पे आपका तो ये बात ही खत्म हो गई जब आपने कह दिया नहीं मेरी मर्जी चलनी चाहिए, वो अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कर दिया, मेरा नसीब ऐसा क्यों फोड़ दिया, मुझे ये क्यों नहीं चीज दी। अल्लाह को क्वेश्चन कोई कर नहीं सकता क्योंकि तुम किसकी मिल्कियत हो। हाँ, यहां वो रहमत के खजाने जो अल्लाह के पास हैं, या ये सब चीजें जिनको भी हम गिला करते हैं कि हमें क्यों नहीं मिली, ये किसकी है, किसकी मिल्कियत है, अल्लाह की। ام اندہم خزائن رحمت ربی کا, ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے تمہارے پاس ہے کیا, تم ہم سے اگر پوچھا جائے جب ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے, نہیں اس ان کو کیوں اتنا مل گیا, ہمیں کیوں نہیں ملا, وہ کیوں اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے, ایسے فلاں نعمت اس کے پاس کیوں اور ہمارے گھر میں کیا کمی تھی, ہم نے ایسا کیا قصور کر دیا تھا, ہمیں کیوں نہیں ملی, کیا تمہارے پاس ہیں, تم مالک ہو رحمت کے خزانوں کے, کہ جو تم اللہ سے کوسچن کر رہے ہو وہ دے گا, دے گا نہیں دے گا, نہیں دے گا. اپنے بارے میں تو ہم بڑے سیانے ہیں کہ بھئی میرا دل کرے گا میں جہاں مرضی خرچ کروں, میرے پیسے ہیں, پیسے بھی ایون دیکھیں, آپ کو کوئی کہہ دے آپ کی ملکیت ہے, آپ نے اگر کمائے ہیں کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ تم نے یہاں کیوں نہیں خرچ کیے, ہم تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں تم کون ہوتے مجھے بتانے والے, میں آگ لگاؤں پیسوں کو اپنی یا میں کچھ بھی کروں تمہیں کیا, میری چیز ہے, تو کیا اللہ کو اختیار نہیں ہے, ہم اس کے ہمارا سب کچھ اس کا, وہ دے یا لے کیا اس کو اختیار نہیں ہے, کیا اب ہم پوچھیں گے اس سے سوال. اب موسم ہے مثلا, اب ایک تو یہ ہوتا ہے نا ہم ویسے کہیں گے آج گرمی بہت ہے اللہ ماجرنا میں نار, آج بہت گرمی, ایک ویسے ہوتا ہے, ایک اعتراض کرنا, ہائے کیوں روز ہی سنو ہونے شروع ہو گئی ہے, روز ہی اب یہ ہو جاتا ہے, روز ہی اب ویسے موسم خراب ہے, ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے, یہ موسم اور یہ دنیا اور یہ زمین اور یہ کون سی چیز ہے جو ہماری ملکیت ہے, اس کی زمین, اس کا آسمان, اس کی ساری چیزیں, وہ بارش کرے, سنو کرے, گرمی کرے, سردی کرے, جو مرضی کرے, ہم کیسے کوسچن کر سکتے ہیں اور اعتراض کیسے کر سکتے ہیں اس پہ, ہم کیسے کچھ بول سکتے ہیں, آبجیکشن کیسے کر سکتے ہیں, کمپلینٹ کیسے کر سکتے ہیں, ایک بھی چیز ان میں ہماری نہیں ہے, ہماری تو اپنی جان ہماری نہیں ہے, وہ ہماری ہمارے جسم میں سے کچھ واپس لے لے, کچھ دے دے ہمیں, کچھ ہم نہیں اختیار رکھتے, ہم تو اپنے بھی مالک خود نہیں ہیں. یہ آئی اوپننگ بات ہے, یہ آیت جو ہے نا صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے رسالت پہ جو آبجیکشن کیا, جی ہمیں کیوں نہیں ملتی, اس کو کیوں مل گئی ہے, تو ہماری ہر چیز کے لیے ہے, یہ جو بھی ہمارے منہ سے اعتراض نکلتا ہے اس کو کیوں, اون دیکھو ان کے پاس اتنا ہو گیا ہمارے پاس نہیں, یہ کس طرح میری زبان پہ آ سکتا ہے, کیا میں مالک ہوں رحمت کے خزانوں کی, کیا میں بتاؤں گی, نہیں, وہ العزیز الوہاب جو رب ہے اس کے پاس ہیں رحمت کے خزانے, وہ چاہے خرچ کرے چاہے نہ خرچ کرے. اللہ اکبر, کتنی کتنی باتیں ہم منہ سے نکال دیتے ہیں نا, ایسی کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, اس وقت ہمیں انکانشیسلی چیک کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں وہ کفار جو تھے ان کو تو یہ تھا نا بھی, یہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں یہ تم کس کی باتوں میں آ گئے ہو, یہ تو جن کے پیسے بنانے کے ڈھنگ ہیں, یہ تو اپنی بس لیڈری چاہتے ہیں, یہ تو آج کل بس ان کا فیشن ہی بن گیا, ہر کوئی یہ بس درس دینے بیٹھ گئے, یہ کرنے بیٹھ گئے, یہ کیا میں سے فارغ لوگوں کے کام ہیں, تم کن کے پیچھے چل پڑی ہو, اس طرح یہ پروپوگینڈاز کرتے تھے. ارے پیچھے کیا تھا, پیچھے یہ تکبر تھا. اللہ انہوں نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کر دی تھی کہ آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, یا آپ مال چاہتے ہیں, یا آپ سرداری چاہتے ہیں, بادشاہت چاہتے ہیں, ہم سب آپ کو دینے کو تیار ہیں, لیکن آپ ان باتوں سے باز آ جائیں بس. اور اس سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی کوئی چل نہیں رہی تھی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کے اوپر ایک شک ڈال دیں گے لوگوں کو, تو ظاہر ہے آپ کا پیغام بھی مشکوک ہو جائے گا نا پھر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آؤں, یہ اللہ کی باتیں ہیں جو میں سنا رہا ہوں, جس وقت یہ کہہ دیا یہ جادوگر ہے, یہ جھوٹا ہے, کوئی بھی آپ کی بات کو مانے گا نہیں, سمجھے گا نہیں, آپ کا ٹرسٹ ختم ہو گیا لوگوں کے اندر, تو جب آپ کی رسالت کو نہیں مانے گا تو پھر پیغام کو کون سنے گا. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی, کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں اس کو دی گئی, کیوں اس کو دی گئی اور کیوں ہمیں نہیں دی گئی رسالت, और हम पर ऐसा वही उतरनी चाहिए थी। आखिर ये कौन होते हैं कि जो इस बारे में सवाल करें कि रसूल किसको बनाना है। इख्तदार का मालिक तो अल्लाह है, बादशाहत का मालिक तो अल्लाह है। फलिया तकूफिल असबाब, तो फिर चाहिए कि वो चढ़ जाएं रस्सियों के जरिए, यानी आसमान पे चढ़ जाओ, जोर है ना तुम्हारे, तो जाओ जाके अल्लाह के खजानों में से अपने लिए फिर कुछ ले आओ, अपनी तरफ मोड़ लो, वहां से रिसालत चेंज करा के अपनी लिखवा के ले आओ। हम सब के लिए यह जवाब है, जो बहुत सख्त रिएक्शन शो करते हैं ना, अगर उनको कोई चीज नहीं मिली और किसी और को मिल गई है, कोई नेमत उनके पास नहीं है, किसी और के पास चली गई है, तो वो उनको लगता है कि पता नहीं हमारा ही छीन के वहां दे दिया गया, जो उसका नसीब है वो उसको मिलेगा, जो इसका नसीब है उसको मिलेगा। सोचे यहाँ पे हमें अजीब लगता है कि वो इतना अच्छा, वो इतनी बेवकूफी की बात क्यों कर रहे थे। हालांकि रोज हम इस किस्म की हमाकतें खुद भी करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट करते हैं किसी भी चीज पे, कोई कोई यानी किसी किस्म की भी नेमतें ले लें, चाहे वो जॉब में आपको प्रमोशन मिलना है, चाहे वो आपको बोनस मिल जाना है, चाहे आपका बिजनेस चल पड़ना है, चाहे आपको कोई और कोई सुख चैन है जो किसी और को मिला हुआ है आपको नहीं मिला, घर का, चाहे वो किसी किस्म का भी है, उसके ऊपर ये ना देखिए उसको क्यों मिल गया और मुझे क्यों। ये अल्लाह की रहमत के खजाने हैं, जिसको चाहे भी अता करे, वो तुमने मांग रहा है तो तुम भी अल्लाह से मांगो, उसके ऊपर देख देख के ना कुड़ो और ना जलो, ना उसके ऊपर एतराज करो, क्योंकि एतराज करना तो सबसे बुरी बात है। क्योंकि एतराज कर किस पे रहे हो, उस देने वाले पे ना, कि उसने क्यों दिया या मुझे क्यों नहीं दिया, उसको क्यों दिया, मेरे पास क्यों नहीं है ये चीज। अल्लाह अकबर, तो जाओ फिर चढ़ जाओ, जाके ले आओ फिर, आप बता दें आप इसके बाद क्या कोई कर सकता है, कितना बेबस है ना इंसान। तो फिर अपनी हद में रहे ना, समझ ले कि मैं कमजोर हूं, मैं बेबस हूं, सारी ताकतों का मालिक अल्लाह तू ही है, मैं तुझसे मांग सकता हूं, मेरा कोई जोर तो है नहीं, अल्लाह मैं हर चीज में तेरा ही मोहताज हूं और मैंने तुझसे मांगते ही रहना। याद रखिए ये भी इंसान के इम्तिहान होते हैं, और जैसे इन कुफारे मक्का का इम्तिहान हो गया, यहां अब मानो उसको जिसको कि तुम सोचते हो कि ये तो एक यतीम बच्चा हमारे सामने पला बड़ा, अब इनकी मान के था, क्योंकि जो हक को पहचान के मानेगा, अपने तकब्बुर को एक तरफ रखेगा मानेगा, वो ही मान सकता है। और जिसने स्टेटसेस देखने हो या जिसके दिमाग में बड़ाई हो किसी बड़े सरदार के ऊपर, भी अल्लाह ताला नाजिल कर सकते थे, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बड़ा सरदार बना देते और, लेकिन फिर क्या होना था कि लोगों ने सरदारी को कबूल करते हुए, सरदारी की वजह से, उस स्टेटस की वजह से, जो भी उनको स्याह सफेद दे दिया जाए वो तो मान ही लेते। आप देखें बड़ा बादशाह कोई कुछ कह रहा है तो वो स्याह सफेद जैसा भी कानून बनाए, सब उसके सामने चापलूसियां करते हुए आ जाते हैं, खुशामदे करते जाते हैं, वो कुछ बोले कुछ कहे जो मर्जी करे, वो लोगों को इससे नहीं कोई फर्क पड़ता, बस उनको ये होता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है तो हमें इससे फायदा होगा, वो पैगाम को नहीं देखते, इसके साथ लग जाते हैं हम भी ताकि हमें भी फायदा मिल जाए। यहां पे असल इम्तिहान था कि वाकई तुम हक को पहचान के, हक को मान के फिर इस दीन की तरफ आते हो, या फिर तुम ये स्टेटसेस में पड़े रहते हो। अब वो ही नहीं आएगा जिसके अंदर तकब्बुर होगा। जुंदुन, ये एक लश्कर है, मा हुनालिका महजूम मिनल आजाब, शिकस्त खाने वाला ग्रोहों में से, ये जो कुफार, ये एक लश्कर ऐसा है जो अनकरीब शिकस्त खा जाएगा। तुम्हें तुमसे रस्सियां तान के तुमने चढ़ना है, ऊपर चढ़ जाओ। अब उसके बाद फरमा दिए कि जाओ ले आओ वहां से अपने लिए रसालत और बादशाहत और जो भी लाना है वहां से ले आओ अपने लिए। और फिर फरमा दिया गया इनका अंजाम, ये लश्करों में से तो बहुत छोटा लश्कर है, अल्लाह के सामने तो बड़े बड़े और कौमें आई और बड़ी हुई जो शिकस्त खा के कहीं गिरे पड़े रहे, ये क्या चीज है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। फिर उसके बाद देखें आप, बाद में बदर भी हुई तो कैसे शिकस्त खाई, बाद में फतह मक्का हो गया तो क्या मिला इनको, ये शिकस्त खाने वाले, ये उस वक्त ही बता दिया गया था, देख लो इनसे पहले कदबत कबला हूं कौम नूह व आद व फिरऔन ذو الاوتاد, इनसे पहले भी कौमें, बड़ी बड़ी कौमें आई, नूह अलैहि सलाम की कौम, आद, फिरौन, और फिरौन जो कैसा था, ذو الاوتاد था, मेखों वाला था, मेखें कैसी थी, इसके पास सोने की मेखें थी, और जहां पे जाता था तो पहले से खेमे गाड़े जाते थे ना, तो वो वहां पे मेखें गाड़ के, तो वो नहीं होती पैक्स डालते हैं ताकि खेमा गाड़ा जाए, तो इतने खैमे होते थे कि इसको फिर मेखों वाला कहा जाने लगा। जब इसके यानी लश्कर या वो कहीं इसकी आर्मी जाती थी और वहां पे वो अपना जैसे पड़ाव डालती थी, कैंपिंग कैंप करती थी, तो वहां पे इस कदर खूंटे गाड़े जाते थे ना, और जितने जाहिर है ज्यादा खूंटे गाड़े जाएंगे उतना ही बड़ा लश्कर होगा ना, तो इससे पता चलता था कि बहुत बड़ी फौज थी इसकी, बहुत कसीर तादाद थी। तो मेखों वाला इसको कहा जाने लगा कि ये इतनी बड़े लश्करों का मालिक था। और इसका भी क्या था, अल्लाह अकबर के लोगों को इस तरह सजा दिया करता था कि उनको सीधा लिटा के उनके चारों हाथ पांव सब में मेखें गाड़ देता था और उन पर सांप बिच्छू वगैरह छोड़ देता था। अस्तग़फिरुल्लाह। और बाज ने कहा कि मेखों से मतलब है बिल्डिंग्स, उनमें भी मेखें लगती हैं ना बिल्डिंग्स में, जब जैसे मेखें लगाते हैं तो फिर ही जोड़ते हैं चीजों को, और उसने बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें बनाई थी, तो वो कहलाता ही जुल अवताद था। सोचे कितनी बड़ी इसकी तामीरात होंगी, कितनी बड़े इसकी आर्मी होगी। हो सकता है सारी बातें हों, ये सारी कोई ये नहीं कि इनमें से एक है, लेकिन हो सकता है सारी इसकी तामीरात भी हों, इसकी वाकई इतना बड़ा लश्कर भी हो, ये इस तरह की सजाएं भी देता हो, ये सब मुमकिन, यानी ये सब चीजें ट्रू हैं। तो सब ये जो कौमें थी, ये वाले तो कुछ भी आजाब नहीं है, ये तो छोटा सा एक लश्कर है, ये इससे बड़े बड़े लश्कर गुजरे हैं। वो आजाब कौन थे? नू की कौम, आद की कौम, फिरौन और समूद और कौम लूत और असहाबुल ऐका, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो मदियन के में आए थे ना शुएब अलैहिस्सलाम, तो वो कौम भी बड़ी जबरदस्त थी। ऐका कहते हैं जंगल को, तो जंगल के पास आबाद थी ये कौम। उलाइक अल अहज़ाब, ये सारे बड़े बड़े ग्रोह थे, ये सारे बड़े बड़े लश्कर थे जिनको हलाक कर दिया गया। उन्होंने क्या किया था? झुटलाया था। उनका कसूर क्या था, क्यों उनको सजाएं मिली थी? कि उन्होंने अपने पैगंबरों की बात को नहीं माना था। तो उनके अंजाम क्या हुए, तो तुम क्या सोच रहे हो कि फिर तुम्हारा ही साथ क्या होगा? अभी ये देखिए ना, ये सारी बातें किसको, फर्स्ट मुखातिब कौन है ये बताएं। फर्स्ट मुखातिब तो मुशरिकीन मक्का ही थी ना, जिनको के हम सोचते हैं कि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से भी थे, आपके कबीले से थे आपके, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत लाडले हैं, क्योंकि ये पैगंबर के रिश्तेदार हैं, ये अब जो मर्जी करें ये तो कुछ कोई मसला नहीं, ये तो आखिरी पैगंबर की उम्मती हैं, या ये तो ऐसे हैं। नहीं, जो रसूल की बात को झुटलाएगा, जो रसूलों के कहने पर नहीं चलेगा, जो अल्लाह की बात को पीछे कर देगा, उनका फिर अंजाम इसी किस्म का होता है। हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, ये सोच के गफलत की नींद में ना पड़े रहें कि हम चूंकि बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम तो मानते हैं और उनके उम्मती हैं, इसलिए हमारी तो थोड़ी ये बातें हो रही हैं, ये तो उन लोगों की बातें हो रही हैं जो ऐसे करते थे ऐसे करते थे। अगर हमारे भी अमाल वही हैं तो सिर्फ मुंह से बोल देने से तो कोई फायदा नहीं होता। अगर शिर्क हमारे अंदर आ चुका है, अगर बद किरदारियां हमारे अंदर आ चुकी हैं, अगर इस किस्म की जो सारी खबासतें इन कौमों के अंदर थी जिनको खोल खोल के अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, तो कहानियां सुनाने के लिए तो नहीं बयान फरमाया ना, इसीलिए बयान फरमाया कि तुमने नहीं ये करना, वरना याद रखो कि फिर अंजाम क्या होगा। तो कोई लाडला नहीं है अल्लाह का कि ये लाडले हो गए क्योंकि इनके ऊपर लेबल लग गया है, हमने कोई स्टिकर लगा लिए कि अब हम तो उम्मती हैं। लाडला वही है जो अल्लाह का कहना मानने वाला है, जो उसके रसूल की बात को सुनने वाला है, वो है लाडला। बाकी के सिर्फ हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। तो तुमसे पहले बड़े बड़े कुव्वत वाले दुनिया में आए, तुम तो उनका अशर अशीर भी नहीं हो, फिर देखो कि उनका क्या हाल हुआ। इन कुल्लुन, नहीं सब के सब, इल्ला कद्दबर रुसुला, मगर उन्होंने झुटलाया रसूलों को, फहक्का इकाब, तो साबित हो गई मेरी सजा उनके ऊपर। देखो उनके ऊपर भी सजा आई थी। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के लिए तसल्ली भी है कि ये ना समझें कि बस ठीक है आज वो जो कर रहे हैं करते रहेंगे और इसी तरह इनका चलता रहेगा और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। एक दिन इनका जो ये जो इनकी बड़ाइयां हैं और जो इनकी सरदारियां हैं और इनकी ये सब सूरज गरूब हो जाना इनका भी। दूसरी तरफ उनको भी धमकी दी जा रही है कि अब तुम ये ना समझ लो कि तुम्हारे पर अभी कोई नहीं पूछ रहा तो इसे धोखा ना खा जाना कि कुछ नहीं होगा हमें। तुम्हारा अंजाम इन कौमों की तरह हो सकता है, अगर तुम वही काम करोगे तो तुम भी वहीं तक पहुंचोगे। जब अजाब आया तो देखो फिर इन कौमों ने फिर कहा क्या था, जब अजाब आया तो किसी से भी टला नहीं था, जब अजाब आया तो वो फिर कैसे चीख चिल्ला रहे थे, कैसे रो रहे थे। अगर उस वक्त फिर वक्त गुजर चुका होता तो अल्लाह की पकड़ से पहले सीधे रास्ते पर आना जरूरी होता। वामा यंजुरुहा उलाई इल्ला सैहतन वाहिदतन, और नहीं इंतजार करते ये सब मगर एक चीख का। मालहा मिन फवाक, नहीं इसके लिए कोई ढील कोई वक्फा, फिर जरा सा भी वक्फा नहीं मिलेगा। यानी एक तरह से ये बात है कि क्या इनको बस उस चीख का ही इंतजार है, यानी उस सूर फूंके जाने का ही इंतजार है। अगर वो फूंक दिया गया तो फिर कोई किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, कोई वक्फा नहीं मिलेगा, उसी वक्त ही तो क्यामत आ जानी है, फिर सूर फूंके जाते ही क्यामत आ जाएगी। फिर किसी को टाइम नहीं दिया जाएगा कि अपनी तौबा कर ले, अच्छा अब ईमान ले आओ, अच्छा अब फिर तुम अपनी इसलाह कर लो, कोई नेकियां कर लो, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, सिर्फ सूर फूंके जाने का। हो अगर सूर फूंक दिया गया ना फिर तो टू लेट हो जाएगा, तो क्या इनको कोई और चीज नहीं जगा सकती। तो सोचती हूँ कि ये आयात काफरों के लिए तो हैं ही हैं कि जो इनकार कर रहे थे रिसालत का, लेकिन हमारे लिए भी कितनी ज्यादा ये बात जगा देने वाली है कि हम जब अपने अमल में कोताही करते हैं, जब अल्लाह के अहकामात हमारे सामने आ जाते हैं उनको पढ़ के सुन के, ये तो एक मजाक ही उड़ाना हुआ ना कि वी डोंट केयर, मैंने पढ़ भी लिया आई डोंट केयर, अल्लाह क्या कह रहा है उसकी किताब क्या कह रही है, मैं पढ़ती जाऊंगी, मैं अंधों की तरह चलती जाऊंगी, मैं पढ़ती जाऊंगी और मुझे नहीं कोई परवाह। ये मजाक उड़ाना है अल्लाह के अहकामात का, ये ढिटाई अच्छी नहीं है। इसलिए कि क्या हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि इसके बाद सूर फूंक दिया जाए तभी हम सीधे हों, तभी हम अपने आप को फिक्स करेंगे, तभी हम गफलत से निकलेंगे, तभी हम अल्लाह के हुक्मों के ऊपर चलने के लिए कोई कदम उठाएंगे। तो उनको तो कहा जा रहा है कि कोई चीज नहीं इनको और जगा सकती, सिर्फ सूर की आवाज ही इनको अब जगाएगी। तो हमारे लिए भी तो यही है कि जब कुरान पढ़ के भी हम सोए रहे, कुरान पढ़ के भी हम अगर सोए रहे तो हम सोए हुए नहीं है, फिर मर गए हम। किसी ने पूछा था ना किसी बुजुर्ग से कि भी ये कुरान पढ़ के भी असर नहीं हो रहा, हम तो सो गए हैं। तो उन्होंने कहा सो नहीं गए फिर मो गए हो, यानी मर गए हो फिर, तुम फिर मरे हुए हो, क्योंकि अगर इंसान जिंदा है तो इस कुरान का असर होगा, लेकिन अगर अंदर ही मर चुका है तो फिर कुरान पढ़ पढ़ के भी रखते जाओगे कोई असर नहीं। तो ये सह चिंगार, ये सूर की बात हो सकती है यहाँ पे कि जो सैहा है ये एक ही सूर फूंका जाएगा और सब खत्म। अस्तग़फिरुल्लाह। वकालू, और वो कहते रब्बाना, ए हमारे रब। देखिए अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं तभी कह रहे हैं रब्बाना। अब इसके अंदर नहीं वो कह रहे हैं हमारे लात है मनात है हमारे जो भी इनके बुत थे हुबल, और वो कहते रब्बाना ए हमारे रब, अज्जिलना जल्दी दे दे हमें, क्या कित्ता ना कबला यौमिल हिसाब, हमारा हिस्सा तो हिसाब के वक्त से पहले ही दे दे, क्यामत क्या आनी है। ये असल में बात क्या थी, ये भी एक मजाक था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्यामत आ जाएगी, अजाब आ जाएगा, हिसाब का दिन होगा। वो कहते हैं हिसाब का दिन, वो कौन सा दिन है, वो तो ऐसा करो हमें तो पहले ही अजाब ले आओ ना, और ए अल्लाह हमें पहले ही हमारा हिस्सा दे दे, हमारा पहले ही हिस्सा दे दे। यानी हमें एक मतलब ये عذاب کا حصہ، یہیں پہ ہمارے لیے عذاب لے آؤ نا، وہاں پہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہو وہاں پہ عذاب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ تو ہمارا حصہ پہلے ہی ہمیں دے دو، یہاں پہ لے آؤ، یعنی اپنے لیے عذاب مانگتے تھے۔ جیسے کہ ابو جہل بدر میں جانے سے پہلے کعبے کا غلاف پکڑ پڑ کے دعائیں کر رہا، اللہ اگر یہ حق پہ ہیں تو پھر اللہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، ہمارے اوپر وہ دیکھیں، یہی پھر تکبر کی بات ہے نا۔ اگر انسان کے اندر عاجزی ہے، اس کو نہیں بھی اگر کوئی اللہ کی بات سمجھ آتی تو دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ اگر یہ حق ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اور اس میں حق ہے اور یہ بات صحیح ہے اور واقعی یہ تیری طرف سے، اللہ مجھے سمجھا دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس کے اوپر چلا دے۔ وہ انسٹیڈ آف یہ وہ کہتے تھے اگر یہ حق پہ ہیں تو پھر ہمارے پر عذاب بھیج دے۔ کتنی زیادہ ایک اپنی بڑائی کی بات ہے، یہ ماننا ہم نے پھر بھی نہیں، یہ نہیں کہ اگر یہ حق پہ ہیں تو اللہ ہمیں ہی پھر ہدایت دے دے، ہمیں ہی نظر آنے لگے، نہیں پھر ہمیں مار دے تو، پھر بھی نہیں ہم سے نہیں ان کو ایکسپٹ کیا جانا، اور واقعی نہیں کر سکا تھا وہ آخر وقت تک۔ پھر دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملنی ہیں، جو آخرت میں بھی جا کے ابھی بھی ملی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی جا کے جو اتنی ہمیں نعمتیں ملنی ہیں، وہ بھی ہمیں یہیں پہ دے دو، اے اللہ یہیں پہ ہمیں دے دے ساری نعمتیں، وہ پتہ نہیں قیامت تو آنی نہیں آنی، وہ تو کب کی باتیں، ہمیں یہیں پہ دے دے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے۔ اور کت سے مراد اعمال نامہ بھی ہے، کہ کیونکہ وہ قیامت کے آنے کو مذاق سمجھتے تھے، تو کہتے قیامت میں ہمارا اعمال نامہ جو ہمیں ملنا ہے آج ہی دے دو ہمیں، یہاں پہ ہی دکھا دو ہمیں، ہم بھی دیکھ لیں جو ہمیں ہمارے لیے ہے لکھا ہوا اس میں۔ یہ ان کی ایک یعنی جسارت تھی جو وہ کرتے تھے نبی کے آگے، اور یہ کتنی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بات حق ہے لیکن کچھ لوگ اس کو اتنا حقیر کر رہے ہیں، اس قدر اس کے اوپر مذاق کر رہے ہیں، اس قدر اس کو بیلٹل کر رہے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، اور الٹا جسارت کر رہے ہیں اللہ کی بات پر اور رسول کی بات پر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے داؤد علیہ السلام کا۔ ان کی باتیں جو ہو رہی ہیں نا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں قیامت کر رہے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات ہوتی ہے نا، اس سے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، تو اس سے دھیان ہٹا کے کوئی اور بات کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس پہ آیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی، ایک بات بتائی بھی ایک نبی کی، اور یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور کہا گیا اس صبر، اے نبی آپ صبر کیجئے، آپ صبر کریں۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر جس کو کرنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے، دیکھیں صبر ہم سوچتے ہیں کہ صرف زبان بند کر لینا یا یہ ہے یہی صبر ہے، نہیں، صبر یہ بھی ہے کہ انسان اس چیز کو لے کر اللہ کے آگے واویلا نہ کرے، شکایت نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، ان باتوں کو لے کر انسان اللہ تعالیٰ سے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک گلہ کر کے اور وہ کرے، وہ بھی یہ صبر کے منافی ہے۔ یعنی صبر انسان کے اندر وہ ہے کہ انسان کمپوزڈ رہے اور اپنی شکایت کو، اپنی جو دل کی تڑپ ہے، اس کو اللہ کے آگے بیان کرے، شکایت نہیں، اعتراضن نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا، میرے نصیب میں یہ کیوں لکھا، یہ اس کے طور پہ نہیں، اپنا دکھ اپنا غم اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دے، بیان کر دے اس امید کے اوپر کہ اللہ ہی ہے جو مجھے اس چیز سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے صبر۔ صبر یہ نہیں ہوتا کہ انسان بس غصہ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، آپے سے باہر ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ کوئی اچھا نہیں کرتا، پھر بھی انسان چلتا رہے، صحیح کرتا رہے، یہ بھی صبر ہے۔ دکھڑا اپنا اللہ کے آگے رونا، یہ بھی صبر ہے۔ اور یہ امید رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ ضرور میرے ساتھ اچھا کرے گا، یہ بھی صبر ہے۔ اور چلتے چلے جانا، یہ بھی صبر ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آج میرا دل دکھی ہو گیا میں سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے بیٹھ جاؤں، یہ بے صبری ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا، ये सबर है। इन्हें क्या आज इन्होंने ये कह दिया, आज ये मुझे ये बातें सुना रहे, बस खत्म करो अभी ये सारा काम, ये तो फिर बेसब्री है। हाँ मैं बहुत, अब मैं तो बहुत थक गई हूं इस चीजों से, मैं इन बातों से, मैं इनको इससे, अब मैं बस सब छोड़ के जा रही हूं, अब मैंने सीखना सिखाना पढ़ना पढ़ाना सब छोड़ दी, ये तो बेसब्री है। तो सबर बड़े हिम्मत के कामों में से है, और सबर अंबिया का तरीका रहा है। अंबिया का देखें, एक नबी से जरा सी बेसब्री हो गई तो फिर आपने पिछली दफा देख लिया था लेसन में कि किस तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। तो इसलिए सबर हर मामले में याद रखें, सफर सबर जो है ये दो तरह का होता है, मुश्किलात पे और आजमाइशों पे तो सबर होता ही है, लेकिन अल्लाह ताला जब फजलो करम करता है और आसाइशें दे देता है तो वहां पे भी सबर करना होता है, अपने आप को हदूद के अंदर रखना होता है, बांध के रखना होता है, आपे से बाहर नहीं हो जाना होता कि अपनी हदें तोड़ के बस जा रहे हैं आप, खुशी में इतने पागल हो गए हैं कि अल्लाह की हदों को ही तोड़ना शुरू कर, ये तो बेसब्री है। एक्सट्रीम ये सिचुएशंस होती है ना, या तो इंसान पे गम बड़ा आ जाता है तो तब वो बेसब्रा हो जाता है, या खुशी इतनी चढ़ जाती है कि उसका नशा भी इंसान को बेसब्रा कर देता। तो सबर ये है कि अपने आप को हद के अंदर रखना, जो अल्लाह ने बाउंड्रीज बनाई है ना उसके अंदर रखना। इस सबर किस पे आप सबर करें या नबी अलामा यकुलून, जो उन बातों पर जो ये कहते हैं, कौन सी बातें कहते थे, इन्हीं के ऊपर आना था वजही, इन्हीं के ऊपर आनी थी, ये झूठे हैं, ये जादूगर हैं, ये ऐसे हैं, लाए ना हमारे ऊपर अजाब, किधर है आपका अजाब, ये जो इस तरह की बातें करते थे, इतनी तकलीफ दे बातें थी ये। अब हमें तो थोड़ा सा ही कोई कुछ कह दे, आप खुद सोच ले कि हमें कोई कह दे ये झूठी है, बड़ी बड़ी झूठी है ये, आपको पता चल जाए आपकी दोस्त ने आपके बारे में किसी को कहा, क्या गुजरेगी दिन और रात, उसके गम से ही नहीं निकल पाएंगे। और होता ऐसा ही है कि इंसान को जो फिक्रे कहे जाते हैं वो इतना आसान नहीं होता उनको भुलाना और इग्नोर कर देना कि बेटे अच्छा अच्छी ठीक है मुझे तो कोई असर ही नहीं होता, कोई कुछ भी कहता है, ऐसा नहीं होता। तो पैगंबर भी इंसान ही थे, बार बार बातें वो याद आती हैं। तो उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया आप सबर करें, आप ना इस चीज को इग्नोर करें उनकी, और क्या करें, देखिए अल्लाह ताला कितनी प्यारी अपने नबी को तसल्ली बताते हैं, याद करें आप उनको, किनको, वज़कुर अब्दना दाऊद, हमारे बंदे दाऊद को याद करें। हम देखें अल्लाह ताला ने एक स्टोरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की और अपने बंदे दाऊद का जिक्र उसमें फरमाया, और देखिए किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन यहाँ पे इनकी बातों से हटा के दाऊद अलैहिस्सलाम की, वो किस्से के ऊपर जो हजारों साल पहले गुजर चुके थे, वो नबी सारे एक दूसरे के भाई हैं क्योंकि एक ही मिशन लेकर आते हैं ना, तो उनके किस्से से आपको एक बात बताई गई है। अच्छा एक और बात यहाँ पे बड़ी जहन में रखने की है, आपने देखा बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी पैगंबर का दिखा के फिर उसके बाद उनका वाक्या सुना के फिर आपको कहा जाता है कि आप सबर कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप हमारे फलां बंदे फलां हमारे यानी पैगंबर को याद कीजिए, लेकिन कहीं हम ये नहीं देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इस बारे में इतराज़ हुआ हो, कोई हसद हो गया हो कि उनका जिक्र क्यों किया जा रहा है, इतनी मेहनत तो मैं भी करता हूँ। आप देखें हम अपनी, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि हम अपनी जो हम आम से लोग हैं और हम अपने आप को जब देखते हैं कि मसलन हम किसी की आंख का तारा हैं, किसी के पास बड़ी हमारी हम किसी के बड़े महबूब हैं, अब वो बंदा हम बड़ी स्ट्रगल भी करते हैं बड़ा ये कि भाई वो खुश हो, ये वो बंदा अगर किसी और का जिक्र कर दे, देख लो उससे जरा सीखो कि कैसी है वो, आप उससे सीखें कि वो कितना अच्छा काम करती है, आप उससे सीखें उसकी ये बात कितनी अच्छी, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत गुस्सा आता है कि इसने दूसरे की मिसाल क्यों दी, असल तो मुझे इसकी आंख का तारा बनना चाहिए और मेरी ये मिसालें और तारीफें करता रहे, मुझे दूसरे की मिसाल क्यों दे रहे हो, मैं क्या अच्छी नहीं हूं जो दूसरे की मिसाल मुझे दिखा रहे। होता है ऐसे ना, इंसान जेलसी फील करता है, लेकिन आप देखें कहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ये इतराज कि क्यों मेरे अंदर कोई कमी है जो मुझे दूसरों की बातें बता बता के नसीहत की जा रही। बच्चे भी नहीं पसंद करते कि अब उनके सामने कहा जाए जी देखो दूसरे बहन भाई को ही देख लो, तुम्हारा ये बहन भाई कितना अच्छा और वो है, उससे तुम सीखो और उसे देखो और उसके मुताबिक किस तरह तुम भी करो, तो कहते हैं कि क्यों आप हमें उसकी क्यों बता रही है। और हम खुद भी, हमारा ये हाल है, बच्चों का क्या बात करनी, हम खुद इतने बड़े होके हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमसे नहीं होता कि कोई हम किसी के नजर में अच्छे हैं तो अब वो किसी और की मिसाल हमारे सामने रखे। अल्लाह अकबर। तो अब यानी बड़े हौसले की बात है, बड़े उसकी बात है। अच्छा, छोटे बच्चों के अंदर ये चीज शायद इतनी नहीं होती, क्योंकि मैंने इसको चेक करने के लिए अपने छोटे के सामने मिसाल रखी उसके, वो एक दोस्त की उसकी थी, कि देखो उसने कितना प्यारा ये चीज बनाई है, और वो चीज उसको दिखा रही थी, मैं उसके दोस्त का भी बता रही थी, तो वो इससे खुश हो रहा था कि हाँ वो बहुत अच्छा है, वो इस चीज में बहुत अच्छा है, और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो मैंने कहा ये कितना फर्क है, हम जो बड़े हैं वो एकदम जेलस हो जाएंगे कि हाय उसकी क्यों तारीफ कर दी, और छोटे बच्चे प्योर होते हैं ना, तो देखिए फितरत के अंदर ये चीजें नहीं है, ये बाद में हमारे अंदर ये शैतान पैदा करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नहीं इस चीज को वो महसूस किया कि अच्छा इतना मैं इतने बुलंद मर्तबे पे, दाऊद अलैहि सलाम तो जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना मकाम और मर्तबा है तमाम अंबिया में, तमाम रसूलों, तमाम उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ऊंचा मकाम है, यानी सारे नबियों की जो इमामत कराने वाले हैं उन आप उसी से देख लें कि इमाम तो सबसे ही आगे होता है। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं महसूस हो रहा कि अल्लाह ताला अब उनकी मिसालें देना शुरू हो गया, मैं अल्लाह का इतना महबूब और अल्लाह दाऊद अलैहि सलाम का जिक्र करके मुझे बताएगा, कभी आपने ये बात सोची? सुभान अल्लाह, ने कितने बड़े दिल थे उनके, हम तो जरा नहीं तारीफ बर्दाश्त कर सकते कि वो किसी और की तारीफ हमारे सामने कोई करे इस तरह से, जायज तारीफ तब भी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। सुभान अल्लाह। तो जितना भी होंगे दाऊद अलैहिस्सलाम अगर हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर के एग्जैक्ट नहीं है मर्तबे में। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में कि रसूलों के भी बास के दर्जे बास से डिफरेंट है, बास को बास पे अल्लाह ने फजीलत दी हुई है। तो वो कहें कि भाई वो उनको मेरे ऊपर क्या फजीलत हासिल है, मैं उनसे ऊपर हूं, अब मैं क्या उनकी बातें सुनूं कि वो सबर करें जैसे और उनको याद करें, क्यों उनको क्यों याद करूं, मैं कोई कम नहीं। देखिये रसूल पे रसूल ही होते हैं ना, हमारे जैसे थोड़ दिले तो वहीं पे गिर पड़े कि अच्छा हमारे तो हस्बैंड किसी अपनी बहन की अपनी किसी की तारीफ कर देंगे तो हम वही अच्छा उनकी तारीफ कर रहे, नाजायज नहीं, जायज किसी की कोई ऐसे तो हमसे नहीं बर्दाश्त होती। तो वज़्कुर अब्दना, जिक्र कीजिए हमारे बंदे का, अब्द का। अब यहां पे देखें जितना भी दाऊद अलैहिस्सलाम का मकाम हो जाए लेकिन है वो अब्द ही, और सिर्फ दाऊद भी फरमाया जा सकता था, वज़कुर दाऊद, आप याद करें दाऊद को नहीं, अब्दना हमारे बंदे, यानी वो हमारी गुलामी में फरमा बरदारी में बहुत आगे थे। ये एक ऑनर होता है कि अल्लाह ताला किसी को अपना बंदा कह दे, अपना बंदा कह के पुकारे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्द फरमाया है। दाऊद अलैहिस्सलाम का जो कैसे थे, वल अईद, कुव्वत वाले थे। अब कुव्वत वाले किस तरह से थे, क्या कुव्वत थी उनके पास, आप देखें कि जिस्मानी तौर पे तो कुव्वत वाले थे ही, जैसे कि हमने पढ़ा है दूसरे पारे के आखिर में कि किस तरह वो तालूत और जालूत की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर कैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया था जालूत का और उसको मार दिया था, और फिर बड़े अल्लाह ताला ने इनको बहादुरी दी हुई थी, बहुत बड़े जंगजू भी थे। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे जिस कुव्वत की बात हो रही है वो है इनकी इबादत में बड़ी कुव्वत और हिम्मत। यानी एक हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की है। अब ये भी देखे ना, ये हदीस बयान करना कौन बयान फरमा रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फेवरेट अल्लाह ताला की जो नमाज है ना वो दाऊद अलैहिस्सलाम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमा रहे कि दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज कैसी, मेरी होनी चाहिए नमाज, अपनी उम्मत को बता रहे। और सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम के, उनकी नमाज क्यों अल्लाह को पसंद थी, वो आधी रात सोते थे, एक तहाई रात इबादत करते, फिर रात के छठे हिस्से में सो जाते थे। हमने अगर इस तरह से करनी हो तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मसलन आप देख लें कि ईशा से फजर तक कितने घंटे की रात है, ठीक है, अब उसको आप डिवाइड करें आधा पहले, जैसे अगर 12 घंटे की रात है तो 12 का आधा कितना हुआ, 6 घंटे आप यानी सो गए। फिर उसके बाद एक तहाई हिस्सा इबादत की, तो 12 को 12 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 12 × 1/3 कितना बना, 4 आंसर आया ना। तो 4 आवर्स वो उसके बाद इबादत करते थे, उसके बाद 1/6 हिस्सा फिर सो जाते थे। अब 12 का मल्टीप्लाई बाय 1/6 करें तो कितना बनता है, 2 घंटे, तो बाकी 2 घंटे सो जाते थे। अच्छा, ये ज्यादा क्यों महबूब थी अल्लाह ताला को, देखिए इसके अंदर क्या है, यानी नींद को तोड़ना, खड़े होना अल्लाह के आगे, फिर दोबारा सोने के लिए जाना। हम थोड़ी देर के लिए अगर आंख खुल जाए, कभी सोचें बाथरूम वगैरह ज्यादा जाना पड़े, तो कहते हैं आज रात नींद ही सही नहीं हो सकी क्योंकि बाथरूम मुझे जाना पड़ा, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आ सकी, नींद खराब हो गई मेरी, क्योंकि एक दफा इंसान जाग जाए तो फिर नींद खराब हो जाती। तो हाँ, अगर हम जैसे अक्सर हमारी कोशिश होती है, आसान ज्यादा ये होता है फजर से पहले इंसान उठ जाए और उसी में तहज्जुद पढ़ ले, ये नहीं कि कोई वो गलत है, लेकिन मतलब है कि वो इतना मुश्किल नहीं है जितना ये ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आधी नींद करके फिर उठ के फिर से दोबारा अब वुजू कर लिया हुआ अपने, यानी सही तरह होश आ गया हुआ, फिर उसके बाद फिर से सोने के लिए जाना, तो वो तो हम कहेंगे कि वो 2 घंटे भी क्या सोने, उसमें तो सारा वक्त करवटें ही बदलते रहे। तो लेकिन अल्लाह ताला को ये फिर बड़ा पसंद है, और फिर आप देखें पूरी रात की नींद करके उसके बाद आखिरी फजर से पहले उठना वो फिर भी आसान है, जब अभी आधी नींद हुई हो तो फिर जरा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही होगी। तो अल्लाह ताला को उनकी ये रात की इबादत बड़ी प्यारी थी। दूसरे नंबर 2, रोजा किस तरह रखते थे, एवरी डे नहीं रोजा रखते थे, एक दिन रखते एक दिन नहीं रखते, एक दिन रखते एक दिन नहीं रखते, और जब दुश्मन से उनका मुकाबला हो जाता तो कभी फरार इख्तियार नहीं फरमाते थे, यानी जंगों के अंदर फिर पीछे नहीं होते थे कभी। तो ये यानी इबादत के तरीके में जो रोजा है, रोजे में भी एक दिन रखना एक दिन छोड़ना ये ज्यादा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि रोज रोज जो कोई रखता है ना, कंटिन्यूसली कोई रखता रहे तो फिर रोजे की भी आदत पड़ जाती है, फिर वो पार्ट ऑफ योर रूटीन बन जाता है कि अब आपने खाना उस वक्त है सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त आपने खाना है, तो ये 2 टाइम आपके खाने के बन गए, अब उसके बीच में फिर भूख लगती ही नहीं है क्योंकि आदि हो जाता है ना मेदा उसका। लेकिन जो एक दिन छोड़ के एक दिन उठना, इसमें बड़ी मुशक्कत है क्योंकि फिर तकलीफ महसूस होती है ना, अब आदत नहीं है, जैसे अगर आप मंडे थर्सडे का रोजा रखे तो फिर भी आदत नहीं होती उस तरह से, फिर भी रोजा लगता है क्योंकि आप एवरी डे लंच खाने के आदि होते हैं। तो इस तरीके के साथ वो इबादत किया करते थे, इसी तरह वो इबादत के साथ साथ अपनी अपनी जान के भी, अपने अहलो अयाल के भी, अपने और राया के भी हकूक अदा किया करते थे। अब कितना मुश्किल है ना कि अपनी इबादत भी पूरी करनी है, फिर इन सब के हकूक अदा भी करनी है, तो इसके लिए भी कुव्वत चाहिए। क्या तो उनके अंदर बड़ी इस लिहाज से कुव्वत थी कि वो अल्लाह की इबादत भी बड़ी जबरदस्त करते थे, और अगर जिस्मानी कुव्वत भी ले लें, इसे मुराद कोई हरज नहीं है, इसलिए कि जिस्मानी कुव्वत है और फिर इबादत की भी कुव्वत है, और फिर यानी बुराइयों से बाज रहने में भी ताकत चाहिए होती है, इंटरनल ताकत चाहिए होती है, तो वो भी थी उनके अंदर, बहुत कुव्वत वाले थे। इन्नहु अवाब, बेशक वो रुजू करने वाले थे, बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाले थे। ये भी बड़ी ही प्यारी खूबी है कि इंसान के अंदर हालांकि ताकत है, कुव्वत है, फिर भी वो बार बार अल्लाह ही की तरफ रुजू करता है, यानी दिल में भी, अपनी जिंदगी के हर मामले में भी अल्लाह की तरफ रुजू करना। हम भी अपने आप को देखें कि जब हमारे पर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम किसकी तरफ रुजू करते हैं, हम अवाब हैं या नहीं है, या हमें कोई खुशी मिलती है, या कोई एकदम परेशानी आती है, या कोई कोई भी होती, तो अवाब क्या चीज है कि पलटना बार बार अल्लाह की तरफ, अल्लाह का ख्याल आना फौरन। तो इसके लिए शुरू में अपने आप को आदि बनाना पड़ेगा कि हम जैसे कंपास की सुई होती है ना, उसको आप कहीं पे भी ले जाए, आपने कंपास देखा, उसको आप कहीं ले जाए ना, वो नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती रहती है। अगर नॉर्थ की तरफ नहीं पॉइंट करे, इसका मतलब खराब है ये कंपास, तो हमारी जिंदगियों की भी सुई जो होती है ना, वो अटकनी चाहिए कहाँ जाके, घूम फिर के अल्लाह की तरफ ही आए, किसी और डायरेक्शन में ना जाए। ये एक डिवेलप करनी है इस को अपने अंदर। हमने मसलन मुश्किल आ रही है तो फौरन खड़े हो गए अल्लाह की तरफ, जाके मुसल्ले पे खड़े हो गए, अल्लाह से ही दुआएं कर रहे हैं, कहीं किसी मुश्किल में फंस गए फौरन अल्लाह की तरफ रजू कर लिए, किसी को खुशी आती है फौरन अल्लाह का ख्याल आता है, तो हर तरह में अल्लाह की तरफ मुड़ते जाते हैं वो। जैसे मैंने आपको सुई का बताया, कहीं भी ले जाए वो एक ही तरफ घूम घूम के जाती जाएगी, हमारी भी सुई वहीं पर अटक जानी चाहिए। इन्ना सखरनाल जिबाल माहू, हमने मुसक्कर कर दिया उसके लिए पहाड़ों को, माहू साथ उसके, युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, वो तस्बीह करते थे शाम को और सुबह को। यानी ये भी एक मौजज़ा था जो दिया गया था दाऊद अलैहिस्सलाम को कि पहाड़ और परिंदे उनके साथ तस्बीह में शामिल हो जाते थे जब वो जबूर की तस्बीह करते थे, जबूर पढ़ते थे, उसने अल्लाह की हमद के तराने पढ़ते थे तो साथ साथ पहाड़ पढ़ते थे। अब वल्लाहु आलम कैसे वो पढ़ते थे, मगर हमारा ईमान है जब कुरान ने कह दिया तो हम जानते हैं कि वो पढ़ते थे। इसके ऊपर बाज लोगों ने तावीलें करने की कोशिश की थी, वो गूंज जाती थी वहां पे, गूंजते थे पहाड़, तो उसी को तस्बीह कहा गया। अगर पहाड़ों का गूंजना ही तस्बीह होती तो फिर तो वो मैं और आप भी जाके कहीं पे भी जोर से किसी वैली में जाके बोले तो वहां पे भी आप देखेंगे वो एक एको आता है, तो अगर उस एको को लिया जा रहा है तो फिर तो ये कोई बड़ी ऐसी बात ही नहीं है जो कि उनके लिए कही जाए कि ये उनका कोई मौजज़ा था, तो ये कोई ऐसी बात नहीं। तो इसलिए ये आम बात नहीं थी जो सबके साथ होती है, बल्कि ये खास उनके साथ ये मौजज़ा अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना सखरना, हमने मुसखर कर दिया था, अल्लाह ने ये पहाड़ों को इस मामले पे इस चीज के लिए लगा दिया था कि वो तस्बीह करें इनके साथ। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है, पैगंबर भी हैं, बादशाह भी हैं, काजी भी हैं, फिर मैंने आपको बताया कि इनके बाल बच्चे भी थे, फैमिली वाले भी हैं, ऐसा नहीं था कि कोई अकेले बिल्कुल एक आदमी है तो चलो जी, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई बीवी है, ना कोई घर के कोई मामलात हैं, कुछ भी नहीं है तो वो एक तस्बीह कर रहा, ऐसा नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम फैमिली वाले भी हैं। अब इन सारी चीजों में होते हुए वो अल्लाह की तस्बीह के लिए वक्त निकालते थे, उसकी इबादत के लिए रात को उठते थे, खड़े होते थे और इबादत करते थे। आपको पता है जितने ज्यादा जिसके पास यानी एक माल होता है या कारोबार होता है या हुकूमत करना तो और भी बड़ी बात है, और इनकी हुकूमतें ऐसी नहीं थी ना जैसे कि आज के हुक्मरानों की होती है, उनको पता ही नहीं हमारी राया के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने उनमें गुम है, तो ये वो वाले हुक्मरान तो थे नहीं, ये इतने अदलो इंसाफ वाले हुक्मरान थे। ऐसी हुक्मरानी करना इटसेल्फ कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है, उसके अंदर से भी फिर टाइम निकालना। आजकल तो मालदार लोग जो माल रखते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, जी कारोबार के झंझट ही इतने हैं, ये हमारे काम ही इतने हैं, आपको क्या पता कि हम कितने उसमें फंसे रहते हैं, हमें तो ये भी नहीं याद रहता कि नमाज का टाइम हो गया, इस मीटिंग में उस मीटिंग में उसमें ऐसे। तो जो इतने बड़े बादशाह हों, इतने कितनी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, काजी भी हों, उनके ऊपर कितने काम होंगे, इसके बावजूद ना बादशाहत ने उनको अल्लाह की तस्बीह से रोका, ना इतने ताकतवर होने ने उनको अल्लाह की तस्बीह से रोका, ना कोई हुकूमती कामों ने, ना कोई अदालती कामों ने इनको अल्लाह की तस्बीह से रोका, बल्कि ये उसके बावजूद अल्लाह की तस्बीह किया करते थे। अगर छोटा सा एक बिजनेसमैन भी ये कह देता है कि मेरे काम इतने हैं कि मैं उसमें से निकाल नहीं सकता टाइम इबादत के लिए, तो आप सोचें हुकूमत के काम कितने बड़े होते हैं, उनके अंदर से वक्त निकालना और रात को भी खड़े होना अल्लाह के आगे, ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि देखिये जब इंसान के ये दो इम्तिहान है, जैसे मैंने बताया ना कि सब्र भी इन दो चीजों में होता है, क्योंकि ये भी इम्तिहान होते हैं, गम इंसान के ऊपर आए, कोई परेशानी आए, वो भी इम्तिहान है, उसमें इंसान अपने आप को कैसा रखता है, अल्लाह का फरमाबरदार रहता है या नहीं, क्योंकि शैतान बहुत उसको बहकाता है। जब इंसान पे कोई परेशानी आती है तो शैतान इतने वसवसे लेकर आता है उसके अंदर, या गम टूटता है ना तो बहुत वसवसे लाता है, क्योंकि इंसान अंदर से वीक हुआ होता है उस वक्त। इसी तरह जब इंसान के पास बहुत ऐशो इशरत का सामान है, बहुत दौलत है, बहुत सब अच्छा है, एवरीथिंग गोइंग वेल और बड़े ओहदे हैं, तब भी उसके लिए आजमाइश होती है ये कि अब ये कैसे रहता है। और जो मालदार लोग हैं, जिनका काम कारोबार घर सब अच्छा चल रहा है, उनके लिए बेहतरीन मिसाल है दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, कि उन्होंने नर्म गद्दों को या अपनी कितना उनका महल था या उनकी कितने कारोबार कारोबार तो नहीं हुकूमती काम थे, उनमें से किसी को भी एक्सक्यूज नहीं बनाया। जो अपने आप को बिजी कहते हैं ना, इसकी वजह से घर ही इतना बड़ा है, उसको देख भाल ही उसकी इतनी टाइम ले जाती है, मेरा उसकी सफाई इतना टाइम ले जाती है, मेरे कपड़े इतने उनको रखना इतना हो जाता है, पता नहीं क्या क्या और मसरूफियात हैं जो कि हमें दूर रखती हैं अल्लाह की इबादत से, उसके जिक्र से। तो वो देखें फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल कि उनसे भी बड़ी किसी की हुकूमत या किसी के घर बार या किसी के काम होंगे जो कि इतने इतने के बावजूद अगर कर सकते हैं, तो हम में से कोई इतना नहीं है जितनी उनकी हुकूमत थी और जितने उनके काम थे। हम फिर कैसे एक्सक्यूज दे सकते। और वो सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान फरमाते थे। आशी के माने यानी जिस वक्त सूरज गुरूब होने से पहले का जो वक्त होता है, जोहर के बाद से लेके अगले दिन जो सुबह तक का, ये भी कहा जाता है। और इशराक के माने सुबह का वो वक्त जिसमें धूप जमीन पे फैल गई हो। अब इस वक्त में जैसे हमारे यहां भी है, इशराक की नमाज पढ़ी जाती है, और बड़ी ये भी ऐसी नमाज है, समझ लें कि सुबह के वक्त की तहज्जुद ही है इशराक की नमाज। तो तिर्मिज़ी में जैसे हदीस आई है कि जिस शख्स ने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, फिर सूरज तुलू होने तक बैठ के अल्लाह का जिक्र करता रहा, फिर उसने दो रकत नमाज पढ़ी, तो उसको हज और उम्रे का पूरा पूरा अजर होगा। फिर इसी तरह चाश्त की नमाज, जिसको हम यही कहते हैं इशराक, यानी जोहर से पहले पहले तक का जो टाइम है, इसके अंदर जो जिक्र करता है, इसकी बड़ी फजीलत है, इसकी बड़ी, इसके अंदर दो नफल पढ़ने की बड़ी फजीलत बताई गई है। जैसे कि एक और रिवायत में आता है सही मुस्लिम की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सुबह को उठता है तो उसके हर जोड़ पे सदका वाजिब होता है, कि हमारे पर हम में से हर एक ऊपर जरूरी है कि हम अपने हर हर जोड़ का सदका दें। तो फरमाया बस हर तस्बीह पढ़ना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना सदका है, हर अल्लाहु अकबर को पढ़ना सदका है, हर नेकी का हुक्म देना सदका है, हर बुराई से रोकना सदका है, चाश्त की दो रकत नमाज पढ़ना ये भी सदका हो जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त फिर चार रकत पढ़ा करते थे। तो ये जो आपके सुबह शाम के अज़कार हैं वो भी इसमें आ जाते हैं कि आप सुबह शाम जो अज़कार करते हैं, फजर पढ़ने के बाद आप जिक्र करें बैठ के, उस वक्त आप कुरान पाक पढ़ते हैं, या मगरिब से पहले जो आप यानी असर के बाद जो आप टाइम होता है उसके अंदर जो आप हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह भी फरमाया, वह सब हो बुकरतम वासीला सबह बिल आशी वल इबकार, इस तरह से आता है ना सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करने का। तो वो खास तौर पे इन औकात के अंदर जिक्र करना बड़ा अच्छा है कि इंसान इन औकात को भी अपनाए जिक्र करने के लिए। तो वो इन वक्तों में जिक्र किया करते थे। और वो तयरा महशूरा, और परिंदे उड़ते उड़ते जब वो सुनते थे इनको तस्बीह करते हुए, वो सब जमा हो जाते थे और इनके साथ तस्बीह किया करते थे। कैसा वो मंजर होगा कि परिंदे भी हवा में मुअल्लक हो जाते थे और तस्बीह पढ़ते थे। देखें कुल्लुन लहू अवाब, सब के सब रजू करने वाले थे। ये भी हो सकता है कि हू की जमीर परिंदों की तरफ जा रही, सॉरी दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही हो, कि सब के सब जो परिंदे थे वो दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करने वाले थे। और ये भी हो सकता है कि कुल में सब ही आ जाएं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी, परिंदे भी, सब ही अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। ये सब अल्लाह के कितने प्यारे बंदे थे कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया करते थे। तो अब देख लें कि यानी पैगंबर जो हैं ऐसे ही नहीं इतने मुकाम पर होते, उनके वाकई आमाल भी इस काबिल होते कि किस तरह वो अल्लाह ताला के आगे पीछे चले जाते हैं, झुके चले जाते हैं। और यही चीज़ है ना जो इंसान को अल्लाह के सामने अल्लाह के मुकर्रब बनाती है और अल्लाह ताला के आगे दर्जे अता फरमाती। यही चीज़ है कि हर कदम पे इंसान, हर इम्तिहान में इंसान, चाहे उसके पास हुक्मरानियाँ मिल जाएं उसको, बादशाहतें मिल जाएं उसको, या उसको मुश्किलात आएं, गम आएं, परेशानियाँ आएं, जिंदगी में अप आए या डाउन आए, जिंदगी एक सी नहीं रहती ना, कभी उरूज है कभी जवाल है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। जैसे कश्ती चल रही होती ना समंदर पे, कभी ऊपर को जाती कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हर हालत में वो अल्लाह का बन के रहे, ना तो हुकूमतें और माल और आसाइशें और नेमतें उसको अल्लाह से दूर करें, और ना ही परेशानियां और गम। और जैसे हमने पीछे यूनुस अलैहि सलाम की भी मिसाल देख ली कि कितनी परेशानी में वो, कितनी बड़ी एक आजमाइश थी, कितनी सख्त एक चीज थी, उसके अंदर वो फंस गए थे, उसमें भी वो अल्लाह को ना भूले। तो ये राहे हक है संभल के चलना, यहां है मंजिल कदम कदम पे। तो हर यानी जो भी रास्ता हो, कैसा भी हो, ऊपर हो नीचे हो, किसी किस्म के हालात में आप हैं, उसमें अल्लाह के आगे पीछे रहना, झुके रहना, उसकी इबादत में कमी ना आए, उसकी तस्बीह में कमी ना आए, उसकी फरमाबरदारी में कमी ना आए। ये कुव्वत वाले हो के, हकूमत वाले हो के, बादशाहत वाले हो के भी देखो कैसे बिछे हैं, बार बार अल्लाह ताला उनकी तारीफ फरमा रहे हैं, इन्नहु अव्वाब, वो रुजू करने वाले थे बावजूद इसके कि वो कुव्वत वाले थे। क्या चीज नहीं थी दाऊद अलैहिस्सलाम के पास? एक होता है ना इंसान को एक अपना होता है कि मैं फिजिकली बहुत फिट और बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर हूं, एक मर्द के लिए ये चीज होती ना, फिजिकली भी वो टॉप पे थे, ठीक है। और वैसे देखें स्टेटस में दुनियावी तौर पे तो बादशाह का स्टेटस सबसे ऊपर होता है दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए, वो भी उनके पास था। इसके अलावा अल्लाह के हां भी उनका स्टेटस कितना बुलंद था कि वो पैगंबर थे। इसके अलावा सोच लें, वो आगे आ रही है बात कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, काजी थे,